जय राधा माधव कुंज बिहारी वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना पीरावन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hari Rama, Hari Hari Rama,
Hari Hari Rama,
Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Balbhadra, Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bol Premanande Jai Om Nitalila Pravish Vishnupad Privarjikacharya Ashtota Sat. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki Jai. Jai Om Nitalila Pravish Vishnupad Privarjikacharya Ashtotarshat Bhakti Siddhanta Sarsati Thakur Prabhupada Ki Jai. Anantakoti Vaishna Vrinda Ki Jai. Jai Srila Namacharya Hridas Thakur Ki Jai. Jai Sri Sri Yugdharma Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai Sri Sri Vishwa Mangal Patit Pavan Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai. Vishwa Holy Name Day Ki Jai. Sab Ved Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Hari Prema. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरं मिलितं येन स्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले शयं रूपकरामय्यं ददातु सर्वशान्ति वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीपादपद्मकमलम् श्रीगुरुणा वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णगणललिता श्रीविशाखानन्दा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री प्रणमामि प्रिये वांछा जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण। तो रविवार के इस प्रतिभोज उत्सव में लव फिस्ट में आए हुए सभी भक्तों का राधा गिरधारी मंदिर में स्वागत है। प्रभुपाद जी के द्वारा ये विशेषकर आजीवन सदस्यों के लिए ये प्रीति भोज होता उन्होंने निश्चित किया था, लेकिन उनके साथ और भी भक्त आ सकते हैं। तो इस प्रीति भोज में आए हुए सभी आजीवन सदस्य, सभी भक्त और दर्शनार्थी, पहली बार आए हुए सभी दर्शनार्थियों का हम विशेष रूप से हार्दिक स्वागत करते हैं। और प्रथम आज का दो विशेष सूचना है उसको हम बता देते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रवचन पूरा होता है सब हैं, कोई विनती करने पर भी रुकता नहीं, रुकने पर भी। वास्तव में प्रवचन पूरा होने के बाद जो सूचना या अनाउंसमेंट होता है उसका श्रवण करके सभी भक्तों को जाना चाहिए। प्रसाद वहीं है, कहीं जाने वाला नहीं। तो विशेष पहली सूचना यह है कि सभी भक्तों को जो प्रसाद रविवार को दिया जाता है, तो उन सभी भक्तों से 12 से 1 बजे तक फ्री कूपन दिए जाते हैं। तो कृपा करके उन कूपन को लेकर ही वहाँ प्रसाद के लिए जाना चाहिए। जो कूपन प्राप्त नहीं किए होते हैं उनको प्राप्त कर लेना चाहिए और फिर वहाँ प्रसाद लेने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया। उसके बाद आज का एक विशेष अनाउंसमेंट है कि आज जुहू मंदिर में हरिनाम संकीर्तन है। आप सभी जानते होंगे, शायद जो नवी भी जानते हैं, प्रतिवर्ष हरिनाम सप्ताह मनाया जाता है, है? विश्व मंगल के लिए ये 7 दिन का हरिनाम, वर्ल्ड होली नेम वीक या हरिनाम सप्ताह, जो पूरे विश्व में हरिनाम होता है 7 दिन विशेष रूप से, और मंदिरों में भी और जो भी भक्त हैं उनके लिए भी ये 7 दिन में विशेष एक आदेश होता है कि आप लोग भी ये 7 दिन जो हैं उसमें विशेष जप कीजिए। विश्व मंगल है, विश्व के जीवों के मंगल के लिए। और ये 7 दिन का जो विश्व हरिनाम सप्ताह मनाया जाता है, ये विशेष रूप से नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तिरुभाव तिथि के उपलक्ष में मनाया जाता है। भक्त लोग जानते हैं कि पिछले 21 तारीख हरिदास ठाकुर का तिरुभाव तिथि अनंत चतुर्दशी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन बड़े ही विलक्षण ढंग से नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने अपने देह का त्याग किया अपनी इच्छा और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो जो हरिदास ठाकुर हैं वे नामाचार्य, उनको पद्मी मिला हुआ है। नाम में दिन का 3 लाख नाम जप करने के बाद कुछ ग्रहण करते थे, और वे नामाचार्य हरिदास ठाकुर और कोई नहीं है, श्री ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं जो गौर लीला में विशेष रूप से आए हैं। तो उन नामाचार्य हरिदास ठाकुर के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष में साथ साथ में हमारे महान आचार्य भक्तिवेन्द्र ठाकुर के आविर्भाव दिन के उपलक्ष में और श्रील प्रभुपाद महाराज के इस हरिनाम को लेकर विदेश जो गए उस दिन के, ये 3 मुख्य, उस वीक के 3 मुख्य दिन हैं, और इस दिन को लेकर ये विश्व हरिनाम सप्ताह मनाया जाता है। तो इस विश्व हरिनाम सप्ताह का ये अंतिम संकीर्तन है, हैं? पिछले रविवार को भाइंदर में हुआ था, शनिवार को मीरा रोड में हुआ था, और गोपीनाथ मंदिर में हुआ, और भी अन्य अन्य कई प्राय लगभग सभी जगहों में ये हरिनाम मनाया गया। तो आज ये अंतिम चरण में जुहू मंदिर में संध्या काल में मनाया जाएगा। यहाँ से बसों की सुविधा है प्रसाद लेने के बाद, तो सभी भक्तगण इस हरिनाम में सम्मिलित हुई। हरिनाम जो है विश्व मंगल, कलयुग के लिए ये हरिनाम ही एकमात्र जीव के लिए उपाय है। भले विश्व शांति के लिए, विश्व मंगल के लिए और भी अनेक उपाय किए जा रहे हैं, है ना? कई लोग विश्व शांति हेतु यज्ञ करते हैं और भी कुछ कुछ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वास्तव में रामबाण इलाज जो है वो हरिनाम संकीर्तन है। ये जो हरिनाम है, एक तो ये बहुत ही सुगम है और कलयुग के लिए एकमात्र उपाय है। हरिनाम ये भगवान चैतन्य देव की बहुत बड़ी कृपा है कि बहुत ही सहज में हमको ये हरिनाम मिला है। ये विश्व के लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हरिनाम इतना सहज है कि एक हम बहुत प्रसिद्ध घटना सुन रहे थे, दूसरे दूसरे साधन और हरिनाम, बहुत डिफरेंस। दूसरे दूसरे साधन इतने सुगम भी नहीं है, इतने सुसुखम भी नहीं है। हरिनाम सुगम भी है और सुसुखम भी है। जैसे आप हरिनाम कीर्तन में मग्न हो जाते हैं तो बिल्कुल आनंद छा जाता है, आनंद की वर्धन होता है, प्रत्येक व्यक्ति कूदकने लगता है, नृत्य करने लगता है, आनंद में सरोबार हो जाता है। और सुगम कितना है, इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई और है यज्ञ करना है कितना खर्चा है, और उसमें भी उसमें सफलता मिलती है, इसके लिए बहुत संदेह, और धुआं मिलता है, ये तो बहुत ही कष्ट है। लेकिन हरिनाम बस सुसुखम है। एक घटना आप सुनिए, बिल्कुल सत्य घटना है, हरिद्वार से आगे की। आप जब हरिद्वार से बद्री नारायण जाते हैं, केदारनाथ या सोमनाथ या बद्री नारायण, तो देव प्रयाग के बाद जहाँ तक बस जाती है वो रास्ता जो है बड़ा कठिन है, जो लोग गए वहाँ जानते हैं। एक तो पृथ्वी से बहुत ऊंचाई है, और वहाँ जब बस जाती है तो आप उस बस में से अगर खिड़की में से नीचे देखेंगे तो जो गंगा जी है वो अपने खेतों में जो पानी का नहर होता है इतना छोटा, एक फुट का, इतना गंगा जी दिखता है। मतलब कितना नीचे है, इतना ऊंचा, 100 मंजिला जैसा ऊंचा, और वहाँ से देखते हैं तो हैं। और वहाँ पर जब बस चलती है तो सबके प्राण अद्धर होते हैं, सबके प्राण ड्राइवर के स्टेयरिंग पर टिके रहते हैं कि अगर स्टेयरिंग थोड़ा सा इधर उधर घूम गया तो सबका प्राण अंत तक हो सकता है। ऐसे में क्या हुआ कि एक भक्त है जो हरिनाम कीर्तन करते, एक भक्त और एक ध्यान करने वाला व्यक्ति, दोनों उस बस में एक सीट पर बैठे थे और दोनों वहां जा रहे थे। देखा बहुत ऊंचाई पर हैं और नीचे बहुत, और बस को बड़ा सुविधा से चलाया जा रहा है। उसी समय अचानक हुआ ऐसा कि ड्राइवर का कुछ स्टेयरिंग से काबू हट गया, और ऐसा ऐसा हुआ तो गाड़ी धर 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 ऐसा पूरा हुआ तो सबके प्राण हाय मर गए, हाय मर। तो जो वो भक्त था उसने तो जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, ऐसा जोर से दोनों हाथ ऊंचा करके पुकारने लगा। और जैसे ही वो पुकारने लगा तो कृष्ण की कृपा से, हरिनाम की कृपा से वो बस ठीक हो गया, स्टेयरिंग ठीक हो गया और सबके प्राण भी ठीक हो गए। हाँ, सबके जान में जान आई और सबने सोचा कि अरे ये कौन व्यक्ति था, हरिनाम लिया और हरिनाम की कृपा से हम लोग बच गए। हरिनाम की कृपा से बच गए ये बात नहीं, लेकिन जब सबका प्राण ठीक हो गया, श्वास ठीक हो गया, शांत हो गए, हरिनाम का शुक्रिया कर रहे थे, तभी उस भक्त ने पांच में बैठे हुए उस ध्यानी व्यक्ति, पहले उनका चर्चा हुआ था ध्यान के विषय में और हरिनाम के विषय में, तो ध्यानी होते हैं ये ज्ञानी होते हैं, ज्ञान का पत्नी, तो इनमें बहुत ज्ञान होता है, तर्क वितर्क बहुत करते हैं और भक्तों को उसमें कोई, लेकिन अब प्रैक्टिकल बात कहने का अवसर आ गया। तो उस ध्यानी से उस भक्त ने पूछा कि प्रभु जी, जब बस हड़बड़ा रही थी और हमारे प्राण का अंत होने वाला था, तब आप क्या ध्यान लगाए थे कि क्या किए अपना मंगल के लिए? मैं तो मेरे हमारे लिए तो ये हरिनाम ही सब प्रकार से मंगल करता है, तो मैं तो हरिनाम का उच्चारण कर दिया, क्या आप ध्यान लगा रहे थे? आप अब अंत समय में क्या कर रहे थे? अब जीवन का अंत होने वाला है। वो व्यक्ति से भी अब रहा नहीं गया, सत्य बोले बिना ध्यान की बात कर, अरे ध्यान लगा हुआ भी टूट गया। ऐसे समय में अगर ध्यान लग रहा है तो वो भी टूट जाएगा, ध्यान कहां लगेगा? तो बोला हमारा तो ध्यान हरिनाम में चला गया। तो वो वास्तव में उसी समय स्वीकार कर दिया कि ये हरिनाम है, यही श्रेष्ठ है, यही सुगम मार्ग है, कि अंत समय में अगर व्यक्ति की जीवा से हरिनाम निकलता है, अब अंत समय में ध्यान कहां लगाए? ध्यान के लिए तो आसन चाहिए, वो चाहिए, प्राणायाम करना, कमर सीधो और बिल्कुल एकांत स्थान जाइए, वहां डिस्टर्ब कहां, या तो डिस्टर्ब हो रहे थे हम लोग, तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था मन सबका, लेकिन उस समय हरिनाम निकल जाता है, मुख से नाम निकल सकता है। तो वास्तव में मैंने अनुभव किया कि ये जो भगवान का नाम है यही सुगम है और सर्वोपरि उपाय है। तो इस प्रकार ये जो हरिनाम है, और विशेषकर कलयुग के लिए अब कोई रास्ता नहीं है, जैसे कहा गया है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो न अस्तेव न अस्तेव न अस्तेव, तीन बार कहा गया। तीन बार का अर्थ है कि जो और तीन पथ हैं, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, योग का मार्ग है, जो भी है कर्म योग या ध्यान योग या ज्ञान योग, न अस्तेव न अस्तेव न अस्तेव, अब इनका कोई प्रभाव नहीं, ये कलयुग के लिए नहीं है, नहीं है। मैं आज से लगभग 9-10 साल पहले की घटना बताता हूँ, यहाँ की भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में मैंने सुना था घटी। एक लड़का था कोई 20-22 साल का, तो वो किसी शिविर में जाता होगा तो उसको ध्यान सिखाते हैं, ध्यान करो प्राणायाम, ध्यान में बहुत से नियम होते हैं, यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार प्राणायाम, ये सब नियम होता है। तो उसमें एक प्राणायाम नियम होता है, तो प्राणायाम में सांस को रोकना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। तो वो व्यक्ति ऐसा श्वास को रोकता था, लड़का था 22-23 साल का, तो रोज सुबह ध्यान करता था ऐसा सांस रोक कर। तो सांस रोकने वालों में भी होता है कि सांस और जोर से रोक खींचा जाए, कभी कभी सिखाते हैं कि आपके प्राणों को यहाँ ब्रह्मरद्र पर तक पहुँचाया जाए, तो ये अभ्यास करते हैं। वो अभ्यास करता था रोज, तो बैठता था 7 से 7:15 ऐसा 15-20 मिनट, हो सकता है कभी नींद भी कर लेता होगा, किसी को पता ना चले वो क्या कर रहा है। तो रोज 7:15 या 7:20 तक वो उठ जाता था। एक दिन उसने बड़ा खींच कर प्राणायाम किया, जैसे कभी कभी वो गांजा पीने वाले कभी कभी बहुत जोर से खींचते हैं तो ऊपर आग जल जाता है चिलम के ऊपर, इस तरह उसने भी ध्यान को खींचा और बैठ गया। और बैठ गया तो घर वाले सोचे ध्यान कर रहा है, ध्यान करते करते 7:20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, लेकिन उठ नहीं रहा है। सब लोग क्या समाधि लग गया कि क्या है, क्या करें क्या करें, तो उसको ऐसा जाके ऐसा किया तो वो मतलब वो मूर्ति जैसा हो गया, ऐसा अड़ंग हो गया, सब शरीर अकड़ गया और मूर्ति हो जैसा, और उसने ऐसा जाके किया घर वाले की जी तो मूर्ति ऐसा गिर गया और सब घबराए कि अरे बाप रे क्या हुआ, ये तो बिल्कुल वो जो प्राण था उसका कपाल में चढ़ा गया चला गया। अब वो ऐसा करना है, वो कुछ लोग जो प्राणों को यहाँ ले जाते हैं लेकिन वापस उतारते हैं, लोग उतारता जान नहीं रहा था, अभिमन्यु की तरह वो चक्रव्यूह भेदना जानता था लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता। तो अब वो तो ऐसा मूर्ति जैसा हो गया, पत्थर की मूर्ति जैसा, अब क्या करें, सब चिंता में पड़ गए, अरे बाप रे क्या करें, प्राण चला गया कि क्या। सब ने उसको उठाया, चलो चलो गाड़ी बुलाओ गाड़ी बुलाओ, गाड़ी में डाला और लेकर आए भक्ति वेदांत हॉस्पिटल प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। उसका प्राण प्रतिष्ठा करना लाया गया और सबने देखा क्या हुआ, अरे बाप रे, तुरंत एडमिट करो एडमिट करो, तुरंत एडमिट किया। अब प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया चालू किया और कई उपाय करने के बाद, हाँ बहुत मुश्किल से आधा पौना घंटे के बाद उसको थोड़ा वो होश आया, उसको रखा, 15-20 हजार रुपया प्राण प्रतिष्ठा का हुआ और फिर ठीक हुआ। तो फिर डॉक्टरों ने पूछा होगा क्या कर रहे थे, बोला ध्यान कर रहा था, बोला छोड़ो ये कलयुग के लिए नहीं है, तुम ये हरिनाम करो। क्या ध्यान कर रहे थे, बहुत महंगा पड़ जाएगा ध्यान कभी कभी, यही तो 15-20 में ही हो गया। तो कलयुग में ये सब साधन नहीं है, हरिनाम बहुत आनंद प्रदान करने है, हरिनाम और ध्यान भी। देखिए आप प्रैक्टिकल देखिए, मैं जो बातें कर रहा हूं प्रैक्टिकल सब बता रहा हूं। ध्यान, आप ध्यान लगाने बैठिए, यहां तक कि हम जब जब भी करने बैठते हैं तो जैसे माला चालू करते हैं हमारा मन इधर उधर जाने लगता है ना, तो ध्यान की तो बात फिर कहां रही। हरिनाम हमारे पास है, हाथ में माला है, मुंह से महामंत्र का उच्चारण हो रहा है, फिर भी मन इधर उधर चला जाता है, तो हाथ में माला नहीं है, मुंह में नाम नहीं है, और ऐसे कोई ध्यान करने बैठेगा तो मन को तो और खुला रास्ता मिल जाएगा भागने के लिए। आप प्रैक्टिकल देखिए कि संकीर्तन में जुड़िए। जब संकीर्तन होता है, जैसे आरती हुआ अभी या संकीर्तन होता है, तो आप संकीर्तन में जुड़िए और फिर संकीर्तन के साथ जुड़े रहिए। आपका एक मिनट के लिए भी ध्यान कहीं नहीं जाएगा। संकीर्तन इतना महत्वपूर्ण उपाय है, वो ही सबसे बड़ा कलयुग के लिए ध्यान है। ध्यान नहीं हो सकता, लेकिन संकीर्तन में अगर आप मृदंग और करताल और भक्तों के साथ नाचना और गाना प्रारंभ कर देंगे, चाहे दो घंटा हो गया, दो घंटे तक आपका सभी इंद्रियां, आपका पांव, आपका हाथ, आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें, आपका जुबान और आपका मन, सभी बिल्कुल सवे मना कृष्ण पदारविंद, सभी कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। तो ये हरिनाम संकीर्तन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी भी के लिए आपको कोई भी समस्या है, प्रभुपाद जी के पास तो कोई भी व्यक्ति आता था, हमको ये प्रॉब्लम है, चांद हरे कृष्ण इस महामंत्र का कीर्तन करो, प्रभुपाद जी ने कोई कभी दूसरा उपाय नहीं करता। कुछ भी प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, कुछ भी, आप हरिनाम का जप करो बस, यही एक रामबाण इलाज है कलयुग में, और कोई इलाज नहीं। तो इस प्रकार ये हरिनाम संकीर्तन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान के नाम की महिमा तो इतनी, दूसरे दूसरे साधनों में आप अगर थोड़ा त्रुटि रह गया तो इसका प्रत्यवाय होता है, रिएक्शन आता है हर साधन में। अगर वो ठीक से नहीं हो रहा है तो उसका रिएक्शन आता है। हरिनाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा तो ऐसी है कि किसी भी प्रकार से होता है, किसी भी भाव से होता है, उसका फल बस सीधा ही है। उसकी तुलना करते हैं बीज से, अन्न का जो बीज होता है, कृषक जब भूमि में बोते हैं तो बीज ऐसा डाल देते हैं, तो वो बीज कैसे, कोई उल्टा पड़ता है, कोई सीधा पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि ऐसा सीधा रोप दिया, ऐसा तो नहीं होता है, बीज उल्टे सीधे पड़ते रहते हैं, लेकिन वो बीज जब उगते हैं तो उल्टे सीधे नहीं उगते, सीधा निकलता है। तो ऐसा है हरिनाम, अगर करने में कोई त्रुटि भी हो गया, उल्टा सीधा भी हो गया, लेकिन इसका फल है बिल्कुल सीधा, वो आपको फल प्रदान करता ही है। तो हरिनाम में रुचि रखना, हरिनाम को स्वीकार करना, और संकीर्तन, संकीर्तन जो है पूरे विश्व के लिए मंगलकारी है। नाम जब तो जब हम करते हैं तो हमारा ही मंगल होता है, लेकिन जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो पूरे विश्व का, सभी का मंगल होता है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच जब वार्ता होने लगी तो चैतन्य महाप्रभु चिंता करने लगे कि व्यक्ति जिनको जिवा मिला है वो लोग तो हरिनाम लेकर कलयुग में अपना उद्धार कर लेंगे, लेकिन जिनके पास जिवा नहीं है, जो बोल नहीं सकते हैं, या जो पशु पंछी हैं, वृक्ष इत्यादि हैं, इनका मंगल कैसे होगा। देखिए चैतन्य महाप्रभु का महावदान्याय, उनका इच्छा ये नहीं था कि मनुष्यों का ही उद्धार हो, प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों का उद्धार हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु चिंता ना करिए, प्रभु आप चिंता मत करो, जब आपके भक्तगण इस हरिनाम संकीर्तन को जोर से उच्चारण करते हुए निकलेंगे और वे शब्द जब वृक्ष से टकराएंगे तो उस वृक्ष का भी उद्धार होगा, वे हरिनाम संकीर्तन के, हरिनाम के शब्द जब पशु पंछियों से टकराएंगे तो उनका भी मंगल होगा, और जिनके कानों में पड़ेंगे, जिनके शब्द टकराएंगे, उन सभी का मंगल होगा। तो हरिनाम संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विश्व मंगल हरिनाम संकीर्तन, और विशेष रूप से ये हमारे संप्रदाय द्वारा ये 7 दिन के लिए तो विशेष स्पेशल इनका, हालांकि हरिनाम संकीर्तन हमारा आंदोलन ही है, ये हरे कृष्ण आंदोलन होता रहता है, लेकिन 7 दिन विशेष रूप से ये मनाया जाता है, तो आज उसके लिए अंतिम चरण है, तो आप सभी को उसमें भाग लेना चाहिए, जाना चाहिए। नाम की महिमा, हम तैयारी तो दूसरा करके आए थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर के लिए कि किस प्रकार उन्होंने अपना देह त्याग किया, और जो हरिदास ठाकुर हैं वास्तव में ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। जब ब्रह्म विमोहन लीला जो हुआ था तो ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, आप सभी जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला, मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। जब अघासुर का भगवान ने वध किया, उद्धार किया, वध क्या किया, उद्धार किया, अघासुर एक बहुत बड़े असुर के रूप में आया था और वो ऐसा अपना मुंह फैला के बैठा था और उसका मुंह इस प्रकार फैला था कि जैसे कोई पर्वत की कंदरा, उसका जबड़ा बादलों को छू रहा था, इतना विशाल काय रूप लेकर आया था और जैसे उसका जीवा लग रहा था, जैसे ग्वाल बाल सोच रहे थे कि कोई जैसे प्राइम मिनिस्टर आता है और लाल चादर बिछाई जाती है, लाल जाजम, ऐसा लग रहा था कि वो ये लाल जाजम बिछाया गया हमारे लिए। तो ग्वाल बाल ऐसे खेलते 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 उसमें चले गए। हालांकि कृष्ण को पता था, कृष्ण ने मना भी किया, रोका, लेकिन तब तक वो अंदर चले गए रोकते रोकते। तो फिर कृष्ण भी भक्तों का और उनका रक्षा करने के लिए और उसका उद्धार करने के लिए कृष्ण भी उसमें प्रवेश किए और अंदर प्रवेश करने के बाद अपना कद बढ़ाया और अघासुर का गला में प्राण रुदन होने लगा और इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। तो उसके मस्तिष्क से उसके प्राण निकले और प्राण निकल कर ऐसा कहा गया कि कृष्ण के चरण में समा गए। कुछ देर तक वो ब्रह्म ज्योति ऊपर रहा जब तक कृष्ण उसके भीतर थे, जब बाहर निकले तो वो, और ये लीला आकाश में देवता और ब्रह्मा जी भी साथ में देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा था कि ये बालक भगवान है, अगर भगवान है तो मैं देखता हूँ इसका कुछ, इसकी और मैं लीला देख, ऐसा विचार हुआ कि भगवान है तो मैं देखता हूँ, परीक्षा लेकर देखता हूँ क्या भगवान है, अगर भगवान हो गए तो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, मैं देखता हूँ। हो सकता है ब्रह्मा जी के मन में एक तो ये हो गया कि मैं इनकी और लीला देखना चाहता हूँ, या ब्रह्मा जी के मन में हो गया कि मैं परीक्षा लेकर देखता हूँ। और उसके बाद भगवान जब सब ग्वाल बाल बाहर निकल गए, बच गए, उसके बाद भगवान कलेवा करने के लिए, सब भूख लगी तो बोला, भगवान ने कहा कि ये यमुना का तट बहुत सुंदर है, देखो कमल खिल रहे हैं, चारों तरफ हरा हरा घास भी है, कोयल बोल रही हैं, मयूर नाच रहे हैं और बहुत सुंदर वातावरण है, हम यहाँ बैठकर कलेवा कर लेते हैं और पास में बहुत हरी हरी घास है, बछड़ों को भी चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो बछड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और सब बैठकर कलेवा करने लगे, बहुत आनंद लेने लगे, सब जो अपने घर घर से बना कर लाए थे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद की वस्तुएँ, सब एक दूसरे को देने लगे खाने, बड़े आनंद से ही खा रहे हैं। और ये ब्रह्मा जी और देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, और इस प्रकार ब्रह्मा जी के मन में एक बात आई कि मैं परीक्षा देखता हूँ कि ये क्या करता है। और इस प्रकार जब वो कलेवा करने में व्यस्त थे और सब कृष्ण को देख, कृष्ण बीच में बैठे थे और वो चारों तरफ बैठे थे, चारों तरफ जैसे कमल का पंखुड़ी होता है, तो ग्वाल बाल उस पंखुड़ी जैसे थे और कृष्ण उसके मध्य भाग जैसे थे, सब कृष्ण को एक टक देख रहे थे और बड़े आनंद ले रहे थे। ब्रह्मा जी ने उस समय ऐसा किया कि बछड़े जो थे वो चरते चरते बहुत दूर तक चले गए। कहीं कहीं ऐसा भी भक्त कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया कि घास चारे का लोभ दिया और बढ़िया बढ़िया घास आगे आगे करते गए तो बछड़े चलते गए, यहाँ चल रहे हैं तो आगे और अच्छा घास दिख रहा है तो वहाँ चले गए, ये ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। तो इस प्रकार बछड़े बहुत दूर चले गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा हाँ अब ठीक है, और सारे बछड़ों को चुरा लिया और चुरा कर अपनी योग शक्ति के द्वारा कहीं पर उनको सुला दिया, जो निंद्रा में सुला दिया। ऐसा क्यों किया ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं ऐसा करता हूं अब ये क्या करते हैं, क्या उन बछड़ों को आकर लेकर जाते हैं कृष्णा, या हमारे से आकर जा हाथा जोड़ी करते हैं, अरे भाई दे दो, क्यों ऐसा कर रहे हैं, या हमको झाड़ते हैं, या और कोई लीला कर क्या करते हैं, मैं देखना चाहता हूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान देखना चाहते, लेकिन उन्होंने जो विधि अपनाया वो ठीक नहीं था, है ना, जैसे सती ने विधि अपनाया था भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, तो वो विधि, वो भी उनका भी विधि ठीक नहीं था। शिव जी को बहुत पसंद नहीं आया था, सीता जी का रूप लेकर। तो कभी कभी बड़े बड़े लोग भी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, बड़े बड़े लोग भी गलती करते हैं, ये तो हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने भी एक प्रकार का गलती किया कि बछड़ों को चुरा कर ले जाना, ये लीला देखने के लिए ये ठीक नहीं था, उनके भक्तों को उनसे दूर करना। लेकिन ब्रह्मा जी ने किया तो भगवान सब बछड़े खाते खाते अचानक नजर गए, अरे हमारे बछड़े नहीं है, बछड़े नहीं, बछड़े का भगवान ने कहा कि आप लोग खाइए, आप लोग चिंता मत करो। सब भयभीत हो गए थे बच्चे, बच्चों को भय होने लगा, अरे हमारे बछड़े कहाँ गए, और सोचा कि कहीं गिर गए होंगे, यमुना में गिर जाएंगे या किसी कंदरा में या किसी खड्डी में या कोई बाघ या कोई भेड़िया खा गया कि क्या हुआ। एक तो ये चिंता हो रही थी, दूसरा चिंता कि हम घर जाएंगे तो, हम सबको अनुभव है छोटे छोटे बच्चे थे और घर जाएंगे तो माता पिता तो हमारी खबर ले लेंगे, तो अब उनको भय हो रहा था। तो भगवान ने भय किया, आप चिंता मत करो, आप आराम से प्रसाद लीजिए, आप खाइए, मैं जाकर देखता हूँ, आप क्यों चिंता कर, मालूम है ना, आप जान, मैं जाकर देखता। इस प्रकार हाथ में दही और चावल का कलेवा लिए हुए थे और भगवान लिए लिए खा नहीं रहे हैं, बस उनको लिए लिए गए, इधर देखा यमुना के तट में देखा, कंदरा में देखा, उधर देखा, सब जगह देखा तो कहीं नहीं मिले। भगवान जानते हैं लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी को और मोह में डालने के लिए भगवान इस प्रकार की लीला, तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं। तो उधर वो ढूंढ रहे थे तो इधर आए तो इधर कृष्णा नहीं है, इधर ग्वाल बालों को भी चुरा लिया और उनको भी अपनी योग शक्ति से छुला दिया जाकर अपने किसी निजी स्थान में। अब ब्रह्मा जी देखते हैं अब क्या कर रहे हैं। अब कृष्ण वहां से ढूंढते ढूंढते आए कि बछड़े तो नहीं मिले, यहां आकर देखा तो ग्वाल बाल भी नहीं। तो कृष्ण जानबूझकर नाम ले लग रहे, मधुमंगल हे श्रीदाम, इस पर पुकारने लग, कोई आवाज नहीं मिल रहा है। तो हालांकि कृष्ण समझ गए कि ये हमारे पुत्र की करतूत है। अब भगवान सोचने लगे कि अब हमारा ही पुत्र है, हमने उसको ये पद दिया है तो हम क्या करें, करने तो जो करता है, हमको जो करना है हम करें। तो इस प्रकार फिर भगवान ने ब्रह्मा जी की करतूत को जान लिया और जानकर भगवान स्वयं ही अपना विस्तार करके ऐसे के ऐसे बछड़े और ऐसे के ऐसे ग्वाल बाल बन गए, क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन ऐसे के ऐसे बन गए। लेकिन हम जानते हैं कि संसार में सभी व्यक्तियों का बहुत भिन्न भिन्न प्रकार होता है, सबके वस्त्र अलग हैं, किसी का कुछ है, किसी का केस छोटा है, किसी का केस बड़ा है, किसी को केस नहीं है, किसी का सफ़ेद है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी की आंखें कैसी हैं, किसी ने धोती कैसा पहना है, किसी का लकुटी कैसा है। लेकिन कृष्ण ने जब विस्तार किया तो सेम लकुटी जैसा है वैसा लकुटी, जैसा उनका धोती है वैसा धोती, जैसा चेहरा है वैसा चेहरा, जैसा नाक है वैसा नाक, और जैसा स्वभाव है ऐसा स्वभाव, ये कृष्ण ही कर सकते हैं इस प्रकार। और गाय बछड़े भी, बहुत सुंदर लीला है, बछड़े भी ऐसे हो गए। और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी तो गए देखने के लिए कि आओ हमारे बछड़े ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करते हैं अपने लोक में। लेकिन कृष्ण ने इस प्रकार विस्तार किया और विस्तार करने के बाद बिल्कुल हूबहू अब शाम को कृष्ण ही और सब ग्वाल बाल, हाँ अपने सो अपने साथ, ग्वाल बाल भी वही हैं और बछड़े भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं और सब ग्वाल बाल भी वही हैं। और इस प्रकार घर गए तो ओहो हो उस समय की घटना है, घर जब संध्या काल में गए तो बछड़े जैसे ही अपने घर में प्रवेश किए तो गाय पहले से ही रंबाने लगी और आकर्षित होने लगी, और आकर्षण बढ़ गया। और ऐसा उल्लेख किया गया कि जो गाय, जैसे एक नया बछड़ा हो जाता है बच्चा तो पुराने बछड़े को गाय दूध पिलाना छोड़ देती है, लेकिन आज वो पुराना बछड़ा भी वही बन गया है तो अब उनके लिए भी गाय फिर से उनके स्तन में दूध आ रहा है। जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया था लेकिन उनसे भी वो गाय प्रेम कर रही है। और आज जो ग्वाल बाल हैं तो उनकी माए विशेष रूप से उनसे स्नेह कर रही, उनके स्तन में विशेष रूप से दूध आ रहा है। और सब गोपियाँ जो मातृभाव की गोपियाँ थी उन विशेष रूप से उनको नहलाया, ग्वाल बालों को श्रृंगार किया, तिलक किया और सजा धजा कर गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। लेकिन आज जो करा रही तो विशेष आकर्षण है उनका। कल जब जो राधा गोविंद महाराज से हम सुन रहे थे कि क्यों मथुरा से गोकुल गए कृष्णा, वो दूध पीने के लिए, तो आज अब कृष्णा सब ग्वाल बाल के रूप में बनकर, बछड़ों के रूप में बनकर अब दूध ही दूध पी रहे हैं, सभी माताओं से दूध पी रहे हैं। इतना दिन तो जब माता यशोदा को मात्र भाव की गोपियां देखती थी तो ऐसा कृष्णा तो उनका दूध पिएगा, ऐसा हो सकता है कि कृष्णा हमारा दूध पिए? तो उनकी इच्छाओं को भी कृष्णा ने पूरा किया और अपनी इच्छा को भी, दूध पीने की अपनी इच्छा भी। तो जितनी वात्सल्य भाव की गोपियां थी सब स्नेह से दूध पिला रही हैं और दूध भी बहुत भर भर का रहा है और सभी गौएं भी अपने अपने बछड़ों को दूध पिला रही हैं, भरपूर दूध आ रहा है। तो भगवान ने बहुत दूध पिया, सबका दूध पिया और सबकी इच्छाओं को पूरा भी किया। मनोरथ, ये गोपियां मनोरथ करती थी, उनके मनोरथ को पूरा किया। पूरे साल तक ये लीला चली। हालांकि इसका बलराम जी को पता नहीं था, बलराम जी का बर्थडे था इसलिए उस दिन बलराम जी नहीं थे, नहीं तो बलराम जी को भी चुरा लिया होता। लेकिन बलराम जी उस दिन साथ में नहीं थे, लेकिन बलराम जी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये गाय जिन बछड़ों को दूध पिलाना छोड़ दी थी उनको भी दूध पिला रही हैं, और जब जंगल में चरने जाते हैं तो बछड़े अलग चरते हैं, गाय अलग चरती हैं, गायों को बड़े बड़े गोप चराते हैं, बछड़ों को ये बालक, लेकिन देखते हैं कि गाय कहीं चर रही है गोवर्धन की तलेटी में और देख लेती है कि वहां बछड़ा है, तो गाय कूद कर, जैसे मतलब कूद कर उस बछड़े को दूध पिलाने के लिए चली जाती। ऐसा तो होता नहीं, बलराम जी देखिए ये क्या हो रहा है, ये ऐसे गायों का आकर्षण बछड़ों। बलराम जी समझ गए किसी नारद जी की कोई करतूत है या किसी देवी देवता की, लेकिन बलराम जी ने सोचा कि कोई संत या कोई देवी देवता का ये कोई कुछ माया है तो ये मेरे को आकर्षित नहीं कर सकता, नहीं मेरे को भ्रम में नहीं डाल सकता, निश्चित ये कृष्ण का ही कुछ कार्य है। ब्रह्मा जी बलराम जी को भी मोहित कर दे तो ये कृष्ण, और इस प्रकार सोचकर निर्णय लेकर बलराम जी ने पूछ लिया कृष्ण, कृष्ण निश्चित ये किसी दूसरे का नहीं, तुम्हारा ही कुछ कार्य, क्या बात है, क्या बात है, हमसे छुपा रहे, निश्चित तेरी कुछ है? तो इस प्रकार फिर कृष्ण ने बलराम जी को सब घटना बताई, तब बलराम जी समझे ओ। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी वापस आए तो वापस आकर देखा ऐसे कैसे बछड़े और ऐसे कैसे ग्वाल बाल हैं, ऐसा कैसे, फिर अपने उधर जहां छुपाया था वहां भाग कर गए तो वहां भी वो सो रहे हैं, फिर आकर देखा वहां भी, जाना आना जाना, चक्कर आने लगा ब्रह्मा जी को, अरे ये क्या। और ब्रह्मा जी का अब ट्यूबलाइट उपड़ा, इतनी बार तो जब 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 हो रहा अब लाइट हो गया। आखिर में ब्रह्मा जी समझ गए कि ओ ये तो भगवान ने अपना विस्तार किया, ओहो हो। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बड़ा गलती किया, ब्रह्मा जी पछताने लगे। और फिर जब देखा कि कृष्णा एक जगह स्थान में अकेले खड़े हैं तो ब्रह्मा जी उनका स्तुति करने लगे, और स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने एक श्लोक बोला जो मैंने कहा था कि हरिदास ठाकुर जो हैं ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो जो भगवान से स्तुति किया उसमें एक श्लोक है, तदस्तु मे नाथ सभूरि भावो भवे अत्र वान्यात्र तुवातिरच्चाम यना अहम् एकापि भवजन्नना भूत्वा निवेशे तव पाद पल्लवम्। ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मेरी आपके चरणों में एक प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बनूं। ध्यान देकर सुन, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ जीव हैं, प्रथम जीव हैं, डायरेक्ट भगवान के पुत्र हैं, वे क्या प्रार्थना करते हैं, मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इस जीवन में या इसके बाद के अगले जीवन में मैं आपके भक्त के रूप में विख्यात हो। जय श्री श्री राधा गुरुधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि मैं इस जन्म में या अगले जन्म में या किसी भी जन्म में मैं आपके भक्त के रूप में प्रसिद्ध हूं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के भक्त बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत हाँ, इतना मैं आपके भक्त के रूप में प्रसिद्ध हूं और आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करूं जन्म जन्मांतर, यही आपके चरणों में प्रार्थना। अब ब्रह्मा जी से बड़ा इस जगत में कौन है? कभी कभी लोगों के मन में अहंकार आ जाता है, मैं कलेक्टर हूं, मैं धनी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये कृष्ण भक्ति। ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मा के पद के मैं आपके भक्त के रूप में विख्यात हो जाऊं। और इस लीला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम एक भक्त से भी चर्चा कर रहे थे, सुनना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण इस लीला का सिद्धांत सुनने योग्य, एक बहुत ही महान भक्त ने बताया इसका सिद्धांत कि किसी व्यक्ति को अगर आपको जानना है ठीक ठीक उसका महत्व या उस व्यक्ति का, तो उसके कार्यकलाप को देखने से पता नहीं चलेगा। आप खाली उसका कार्यकलाप देखेंगे तो आप उसको ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अगर जब तक आप उसके शक्ति के बारे में नहीं जानते, जब तक आप उसकी शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक उसके कार्यकलाप देखकर आप उसको ठीक ठीक नहीं समझ सकते, गलती कर बैठेंगे। हम उनकी शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, हम उनके प्रभाव के बारे में नहीं जानते हैं, हम उनके पद के बारे में नहीं जानते हैं और उनके खाली कार्यकलाप देखते हैं, तो आदमी गलत अंदाज लगाएगा। जो लोग कृष्ण की शक्ति के बारे में, कृष्ण के स्वभाव के बारे में, कृष्ण के गुण के बारे में नहीं जानता है और कृष्ण की कार्यकलापों को देख कर कुछ बातें करता है, तो वो व्यक्ति आक्षेप कर देता है, तो इसमें कोई विडंबना की बात नहीं। जो लोग कृष्ण की शक्ति के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके गुणों के बारे में नहीं जानते हैं, वे ही कृष्ण लीला के विषय में भ्रमित भ्रम में रहते हैं। हाँ कृष्ण तो ऐसा किया, हाँ कृष्ण तो पराई स्त्रियों के साथ नाचा, कृष्ण तो ऐसा, वो बोलते हैं, लेकिन कृष्ण के आप शक्ति के बारे में नहीं जानते कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के गुण क्या है, उनका शक्ति कितना है। तो ब्रह्मा जी उनके कार्यकलापों को देखकर उनका परीक्षा लेना चाहते थे। जो सती था वो भगवान राम जो हाय सीते कर रहे थे, वृक्ष से पूछ रहे थे, वृक्ष से तो कोई पागल भी नहीं पूछेगा, कोई तुम्हारा बच्चा खो गया या कोई खो गया तो कोई वृक्ष से पूछता है या किसी मृग से या किसी पशु पंछी से, कोई पागल व्यक्ति भी नहीं, कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी नहीं पूछेगा। तो ये ऐसा कैसे पूछ रहे हैं सती, बस उनका कार्यकलाप दे, उनके शक्ति से नहीं जानती थी कि ये तो यही पर ब्रह्म हमारे स्वामी के यही इष्ट देव हैं, जिनका दिन रात कीर्तन करते हैं वे ही हमारे स्वामी के ये इष्ट देव हैं और यही इस सृष्टि के सृष्टा पालन करता है, संगा यही सर्वस्व है। उनकी शक्ति के बारे में न जानकर उनके कार्यकलापों को देखा, अरे ये तो रो रहे हैं, ये तो उनसे पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार वो भी भ्रम में पड़ी, ठीक ठीक नहीं जान पाई। और यहाँ ब्रह्मा जी भी उनकी शक्ति को नहीं जान, लेकिन जब उनकी शक्ति को देखा तो ब्रह्मा जी आकर उनके चरणों में गिर गए। तो भगवान की शक्ति को किसी भी व्यक्ति की, भगवान की किसी भी व्यक्ति की है, कोई भी व्यक्ति है, उसके शक्ति के बारे में आप नहीं जानते हैं। जैसे प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे कि जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो हम लोग उससे आकर्षित होते हैं, हाँ तेंदुलकर आया चलो। लेकिन वही तेंदुलकर समझो युगांडा चला जाए, जहाँ कोई उसके शक्ति के विषय में नहीं जानता है तो उसको क्या देखेगा, ठीक है क्या जानेगा उसके विषय में, वो कुछ भी कर रहा है तो क्या, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ का कोई भारतीय देख ले तो उसको क्योंकि वो उसके शक्ति के विषय में जानता है। तो जब तक किसी व्यक्ति के शक्ति के विषय में नहीं जानते हैं तब तक उसके कार्यकलाप देखकर आप उसको ठीक नहीं समझ सकते। तो पहले उनकी शक्ति और गुणों के विषय में जानना चाहिए। जो लोग कृष्ण के शक्ति के विषय में और उनके गुणों के विषय में, उनके स्वभाव के विषय में नहीं जानते हैं और उनकी लीलाओं को देखते हैं तो फिर आक्षेप करते हैं। एक व्यक्ति हम सुन रहे अभी तो रासलीला के विषय में बोल रहा था, तो एक भक्त ने कहा अरे तुम रासलीला समझने का प्रयास मत करो, तुम रासलीला के बारे में मत बोलो, तुम खाली रामलीला समझो बस, रासलीला छोड़ो रामलीला समझो तो ठीक है, बस इतना ही काफी है तुम। तो इस प्रकार भगवान की शक्ति के बारे में नहीं जान के उनके कार्यकलाप देखकर कुछ भी टीका करना ये ठीक नहीं, भगवान की शक्ति को जानना चाहिए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने आकर बहुत बड़ा स्तुति किया, लगभग 39 या 40 श्लोकों में भगवान का स्तुति किया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के मन में एक संशय रह गया। वो चाहते थे कि मैं भगवान के साथ ये जो मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है तो मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो भक्त जो होता है, बहुत भक्त के लिए कोई गलती हो गया, कोई अपराध हो गया या कुछ भी प्रायश्चित करना चाहता है तो भक्त के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमसे भी अगर कोई गलती होता है, कोई अपराध होता है तो हमारे लिए कोई दूसरा करने की जरूरत नहीं है, हम इस हरिनाम को ही और सावधानी से या और ज्यादा बढ़ाएं, बस। भक्तों के लिए प्रायश्चित क्या है, और हरिनाम को ठीक से करें और हरिनाम को और बढ़ाएं, हरिनाम में और रुचि पैदा करें, ये हरिनाम को ही और सावधानी पूर्वक करें, संख्या और बढ़ाएं, यही हमारे लिए प्रायश्चित। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर आए और उन्होंने नाम को बहुत महत्व दिया, 300,000 नाम जप किए बिना वो, और उनका दैन्य भाव, उनके गुण हरिदास ठाकुर के, हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजारों में पीटा जा रहा था, देखिए वैष्णव की हैं, तो भगवान का सुदर्शन निकल चुका था उन जल्लादों को मारने के लिए, है ना भगवान। अब प्रश्न होता है कि ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जिन्होंने कह दिया कि खंड खंड हो चाहे दे और जाए यदि प्राण, तभी ना हमें छोड़ी वो हरिनाम, टुकड़े टुकड़े करने पर भी वो हरिनाम को त्याग करने को तैयार नहीं है, उनका टुकड़ा टुकड़ा भी कर दो तो एक एक टुकड़े में से हरिनाम निकलेगा, तबू न छोड़ी वे, तो भी टुकड़े टुकड़े करो तो भी मैं हरिनाम को नहीं छोड़ूंगा। तो उनको जब पीटा जा रहा था तो भगवान, तो चैतन्य महाप्रभु बताया कि मेरा सुदर्शन चक्र निकल चुका था, जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटा गया तब अभी चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु फिर भी बता रहे हैं कि सुदर्शन निकल चुका था उन जल्लादों का वध करने के लिए, लेकिन जब वो तुमको पीट रहे थे तो हरिदास तुम उनके लिए मंगल की कामना कर रहे थे मन में, कि ये ज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं है, हे प्रभु हे कृष्णा इनका मंगल करना। ये वैष्णवों का स्वभाव बड़ा विलक्षण है, कितना विलक्षण स्वभाव है। वासुदेव विप्र चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु इस जगत के सभी जीवों का उद्धार कीजिए, सबको वैकुंठ ले जाइए। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, सब पापी हैं, वो वैकुंठ कैसे जा सकते हैं, हरिनाम ग्रहण करें अपने पापों से नष्ट करें भगवान की शरण ले तो जा सकते हैं। तो बोला इन सबके पापों को मैं भुगतने को तैयार हूं, संसार के सब जीवों के पापों को मैं भुगतने को तैयार हूं, आप ले जाइए। प्रहलाद महाराज का भी ऐसा भगवान से स्तुति, और नमाचार्य हरिदास ठाकुर का तो उनके लिए जो उनको मार रहे हैं बेरहमी से पीट रहे हैं उनके लिए मंगल की कामना कर रहे हैं। वास्तव में भक्तों का स्वभाव ऐसा होना है, हर जीव के लिए मंगल। तो जब हरिदास ठाकुर इस प्रकार उनके लिए मंगल की कामना करते हैं तो भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, और मेरा सुदर्शन भी भक्त के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। तो जब तुम उनके मंगल की कामना कर रहे थे तो मेरा सुदर्शन कैसे कार्य कर सकता है? वो रुक गया, अटक गया, क्योंकि भक्तों के अधीन है। दुर्वासा जी के लिए भी जब दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन पड़ा तो गए थे बैकुंठ तक गए तो विष्णु ने कह दिया वो मेरे हाथ में नहीं, तुम उनकी शरण में जाओ। तब दुर्वासा ने जाकर अम्बरीश महाराज को दंडवत किया। दुर्वासा तो बहुत लज्जित हुआ, अरे नहीं नहीं महर्षि आप क्या कर रहे हैं, मैं तो एक पूछ गया। अरे बोला बचाओ बाद में दूसरा सब बात कह लो। तब अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन को हाथ जोड़कर उनका स्तुति किया, तब सुदर्शन जी रुके। तो सुदर्शन तो इस प्रकार नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी उनके लिए मंगल कामना कर रहे थे इसलिए उनका सुदर्शन रुक गया। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तब मैं आकर तुम्हारे शरीर पर गिरा, और जो वो प्रहार कर रहे थे वो मैंने अपने शरीर पर लिया। और श्रीवास ठाकुर के आंगन में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु एक बार ऐश्वर्य भाव प्रकाशित कर रहे थे तो बताया भी, हरिदास ठाकुर आ नहीं रहे थे, हरिदास ठाकुर को बुलाया, बोला नहीं मैं यवन हूँ, मैं मलेच्छ हूँ, मेरा स्पर्श, मैं तो अस्पर्श हूँ, मेरा स्पर्श भी ठीक नहीं, पाप लगता है मेरे स्पर्श से। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरिदास तुम अपने शरीर को क्या समझते हो, मुझे अपने शरीर से भी तुम्हारा शरीर अधिक प्रिय है, देखो। देखा है आपकी जब तुम्हारे शरीर पर जल्लाद प्रहार कर रहे थे तो मैंने वो प्रहारों को अपने शरीर पर लिया, क्योंकि तुम्हारा शरीर मुझे अपने शरीर से ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार ऐसे महान हरिदास ठाकुर जिनको नामाचार्य कहते, ऐसे ये हमारे जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, ऐसे ऐसे महान भक्त जो भक्त जिन्होंने भगवान को अपने वश में किया। जब उन्होंने शरीर त्याग किया था तो बहुत सुंदर लीला है, और इतिहास में ऐसी दो ही लीलाएं हुई, पितामह भीष्म ने इस प्रकार से शरीर त्याग किया या नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने इस प्रकार किया, भगवान को सामने खड़ा करके सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। पितामह भीष्म ने भगवान से कहा प्रतीक्षताम सदैव, हे कृष्ण प्रतीक्षा कीजिए, मतलब आप खड़े रहिए, खड़े रुक जाइए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। कब तक खड़ा रहूं भाई? कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्, कलेवरम जब तक मैं मेरे इस शरीर को त्याग नहीं देता तब तक खड़े रहिए। तो ठीक इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु से भी हरिदास ठाकुर ने कहा आप यहां मेरे सामने खड़े रहिए, आपके चरण कमल को मेरे वक्ष स्थल पर रखकर, आपके मेरे नेत्रों को आपके मुख कमल पर रखते हुए, और मेरी जीवा को आपके नाम का उच्चारण करते हुए जब तक मैं देह को त्याग नहीं देता हूं प्रतीक्षता हूं, खड़े रहो और खड़े रहो। जैसे भगवान कृष्ण खड़े रहे यहां चैतन्य महाप्रभु भी खड़े रहे। हालांकि पितामह भीष्म को तो ये वरदान था इच्छा मृत्यु का, हरिदास ठाकुर को तो वरदान नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से विनती किया तो उनको खड़ा रहे। और इस प्रकार मुख से चैतन्य महा श्री कृष्ण चैतन्य का उच्चारण करते हुए अपने आँखों को चैतन्य महाप्रभु के उस मुख कमल पर टिकाए रखकर, और उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रखकर उनको देखते हुए, उनका नाम उच्चारण करते हुए हरिदास ठाकुर ने देह त्याग किया। हालांकि बहुत बड़ी लीला है ये। तो इस प्रकार उन नामाचार्य हरिदास ठाकुर के इस शरीर त्याग के उपलक्ष्य में ये हरिनाम सप्ताह मनाया जाता है। उनका आज अंतिम चरण जू मंदिर में है। तो सभी भक्तों से यही निवेदन है, हमको महानिधि गौर प्रभु ने आदेश दिया था कि आप थोड़ा इसके विषय में बताइए कि सभी भक्तगण वहाँ जाए। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं हूँगा, मेरा आज डोंबिवली में प्रोग्राम है जो 15 दिन पहले निश्चित कर दिया है, तो वहाँ जाना है। तो लेकिन आप सबको विनती है कि आप सब जाइए, तो आज हम सब भाग लेंगे। और विशेष रूप से आपको और कुछ सूचना देना चाहता हूँ जो प्रति पहले प्रवचन, लेकिन आज कुछ मंदिर से आदेश भी है क्योंकि प्राय आप उठकर चले जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिल नहीं पाती है। तो विशेषकर भक्तों के लिए विशेष सूचना है राधा गिरधारी मंदिर से और मैनेजमेंट से कि हमारे मंदिर में पिछले 2 साल से भी अधिक समय हो गया है काउंसलिंग सिस्टम प्रारंभ किया गया है। बैठिए माता जी, वो तो चल जाना चाहिए। वहाँ पर प्रसाद के लिए लाइन के लिए भी अभी प्रतिबंध है और खाली भी नहीं है, सूचना आई। तो लगभग 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है कि यहाँ काउंसलिंग सिस्टम चालू किया गया है। काउंसलिंग का अर्थ होता है काउंसलर, काउंसलर का अर्थ होता है वैसे तो सलाहकार, इंग्लिश में काउंसिल कहते हैं सलाहकार। वास्तव में भक्ति जो है ये किसी के अंडर में रहकर ही की जा सकती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जैसे गुरु है, ये गुरु भी सलाहकार है। तो दीक्षा गुरु एक होता है लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। तो किसी के निर्देशन में रहकर, किसी की सलाह के अनुसार हमको भक्ति करना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार सभी भक्तों का आध्यात्मिक उन्नति हो और सुचारू रूप से हो, ठीक ढंग से हो, है ना। अगर हम किसी संस्था से जुड़ते हैं तो संस्था में जुड़ने से उसका भक्ति, उसका आचरण, उसका सभी कार्यकलाप बिल्कुल सुचारू रूप से होना चाहिए। अगर किसी भक्त संस्था से जुड़ा हुआ और उसका आचरण ठीक नहीं है, उसका साधन ठीक नहीं हो रहा है, भक्ति ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए उस संस्था का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। लोग उसके साथ साथ उस संस्था पर भी कैटराइज करते हैं, गुरु पर भी आक्षेप होता है और उस पूरे समाज पर आक्षेप होता है। इसके लिए भक्त को चाहिए कि वो सुचारू रूप से अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक सलाहकार के को निश्चित करे और उसके साथ रहकर उनके निर्देशन में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। ये एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य। दूसरा कि कुछ भक्त हैं जो दीक्षा ले चुके हैं लेकिन कुछ अभी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी विशेषकर कुछ उनका देखभाल करने वाला, उनको ठीक ढंग से मार्गदर्शन करने वाला, किस प्रकार हमको दीक्षा लेना है तो क्या करना चाहिए, दीक्षा लेने के बाद हमारा क्या उत्तरदायित्व है, ये ठीक ठीक जानकर जब हम कोई कार्य करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो उसमें हम सफल होते हैं, है ना। कोई भी कार्य करने के पहले उसके विषय में ठीक ठीक जानना ये बहुत आवश्यक है। भागवतम में भी एक ऐसा श्लोक आया है, जैसे जब ब्रजवासी नंद महाराज ये सब इंद्र की पूजा के लिए तैयारी कर रहे थे तो कृष्ण ने पूछा नंद महाराज से कि बाबा ये क्या कर रहे हैं, क्या आप जो कर रहे हैं ये किसी के द्वारा बताया गया है, किसी शास्त्र में लिखा है या क्या। तो समझो नंद महाराज पूछे कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तो भगवान ने वहां कहा है कि ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि, हम जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में हमको जानकारी, ठीक ठीक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी कार्य को हम ठीक ठीक जानकर समझकर उस कार्य को करते हैं तो उसमें हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, सफल होते हैं। हम दीक्षा, वो दीक्षा ले रहा, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ, और दीक्षा के विषय में हमको पता नहीं है, क्यों गुरु बनाना है, गुरु बनाने के बाद मुझको क्या करना होगा, क्या मेरा उत्तरदायित्व होता है, तो ये सब जानकारी मालूमत होना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे ही बिना जाने दीक्षा ले लेते हैं, पहले हो गया और उसके बाद उनका उत्तरदायित्व मालूम नहीं है उनको, किस प्रकार दीक्षा के बाद हमको आचरण करना है, क्या हमारा उत्तरदायित्व है, मंदिर से हमारा क्या उत्तरदायित्व है, ये सब न जानने के कारण फिर मनमाना आचरण करते हैं और धीरे धीरे वो भक्ति से डाउन होते हैं। तो इस प्रकार हमारा भक्तिमय जीवन भी सुचारू रूप से चले, हमारा उन्नति आध्यात्मिक हो, इसके लिए जो दीक्षा लेना के इच्छुक है उनके लिए भी ये काउंसलिंग सिस्टम में जुड़ना अति आवश्यक है। हालांकि ये अभी प्रारंभ है, जो दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनको काउंसलिंग से जुड़ना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आपको कोई अधिक प्रयास की या आपको कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, मंदिर की तरफ से आपको इसका पूरा पूरा सुविधा, जैसे पहली सुविधा की आप जिस जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में मंदिर की तरफ से काउंसलिंग है, आपको और कहीं नहीं जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे बिरार से लगाकर अंधेरी तक ये हमारे राधा गिरधारी मंदिर का काउंसलिंग चलता है। हाँ, तो हमारा क्षेत्र इतना ही है लगभग, ये भक्त बैठे हैं ये इसी क्षेत्र के हैं, तो उसमें हर क्षेत्र में काउंसलिंग चलता है मंदिर के द्वारा। कुछ सीनियर भक्तों को इसके लिए नियुक्त किया गया और तो मंदिर, और उन काउंसलिंग सिस्टम में अपने क्षेत्र के नज़दीक जो भी काउंसलिंग चलता है उसकी जानकारी प्राप्त करके आप उससे जुड़ सकते हैं, अथवा आप इस क्षेत्र में जहाँ भी काउंसलिंग चलता है आप अपनी पसंद के अनुसार भी काउंसलिंग में जुड़ सकते हैं कि नहीं ये प्रभु जी चला रहे हैं तो हमको यहाँ अच्छा लगता है हम यहाँ जुड़ेंगे, ये यहाँ चला रहे हैं तो हम उनसे जुड़ेंगे। ये जानकारी आपको प्राप्त कर लेना चाहिए कि भाई हम मीरा रोड में जुड़ना चाहते हैं तो मीरा रोड में कब कहाँ और कौन काउंसलिंग लेता है, भाईंदर में कब कहाँ और क्या कहाँ होता है, मलाड में कहाँ होता है, वसई में कहाँ होता है, विरार में कहाँ होता है, ये आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप एक संडे तक हम नोटिस बोर्ड पे इसका पूरा डिटेल लगा देंगे, ये जानकर आप उस काउंसलिंग सिस्टम से जुड़िए, क्योंकि अगले आने वाले समय में मंदिर की तरफ से हर सेवा दीक्षा ही नहीं, जिन्होंने हरिनाम दीक्षा लिया है ब्राह्मण दीक्षा के लिए भी, जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ले लिया हरिनाम दीक्षा ले लिया उनके लिए भी ठीक है, जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो भी मंदिर से अगले कार्यक्रम होंगे जैसे कार्तिक का यात्रा है और बीच में भी जो यात्राएं होती हैं उसमें भी जुड़ने के लिए, और जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा है, राधाष्टमी, ये जो उत्सव होते हैं उस उत्सव में भी सेवा प्राप्त करने के लिए भी, ये सब अब काउंसलिंग थ्रू ही होगा। फिर आप लोग शिकायत करेंगे हमको ये क्यों नहीं मिला, जैसे इस बार जन्माष्टमी में हैं सभी भक्तों को आई कार्ड दिया गया था, बैज दिया गया था और वो उनको सेवा में जोड़ा गया था और उनके लिए सब सुविधा, प्रसाद का भी सुविधा था, वो भी था, तो कुछ लोग शिकायत करने लगे हमको प्रसाद क्यों नहीं। इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपको दुख ना लगे, लेकिन ये सिस्टम में आपको जुड़ना चाहिए सेवा के लिए, उत्सवों में जो सेवा होती है उसके लिए, हमारे दीक्षा के लिए, हमारी भक्ति सुचारू रूप से चले उसके लिए आपको इस काउंसलिंग सिस्टम से जुड़ना चाहिए। ये आपसे मंदिर की तरफ से विशेष विज्ञप्ति भी है, निवेदन भी है, ताकि आप मंदिर की सब सेवाओं का लाभ उठा सकें, मंदिर की तरफ से जो भी आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं उसमें आप लाभ ले सकें, जुड़ सकें, और इस प्रकार आप अपना आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। नहीं तो कई बार होता है कि एक बार हमने देखा कि महाराज का दीक्षा हो रहा था, तो एक हाँ हमको भी दीक्षा लेना है, तुरंत आके पूछा अरे प्रभु जी हमको दीक्षा लेना है हमको, अगली बार अरे भाई ऐसे दीक्षा क्यों नहीं होता, 15 साल से हम आ रहे हैं हमारा दीक्षा क्यों नहीं होगा, ये कैसा, अरे 15 साल से आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो सिस्टम है उससे जुड़िए। कभी कभी शिकायत करते हैं हम 15 साल से आ रहे हैं, इतना सेवा किया हमने, इतना डोनेशन दिया, हमको दीक्षा नहीं मिला, और ये 2 साल का बच्चा दीक्षा ले लिया, ये बात नहीं है। बात यह है कि आप काउंसलिंग सिस्टम से नहीं जुड़ रहे हैं, तो आप काउंसलिंग सिस्टम से जुड़िए, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं, और इसमें हमारा ही हित है। हमको सब सेवाएं उपलब्ध होगी, हमको मंदिर से सब सुविधा प्राप्त होगी, हम यात्रा में जा सकेंगे, हम दीक्षा ले सकेंगे और हम सुचारू रूप से भक्ति कर सकेंगे, और साथ साथ में भक्ति करने में ऐसा भक्ति करना इतना सुगम है लेकिन इतना आसान भी। कई हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, कई प्रकार के विघ्न भी आते हैं, और उस समय अगर हम काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं तो कई भक्तों का हमको सहयोग रहता है, और इस सहयोग के कारण कैसे कलयुग में संगठन में शक्ति है। तो जिस काउंसलिंग से आप जुड़ते हैं उसमें बहुत बड़ा एक संगठन होता है, आपके पीछे कोई है, आप किसी भी स्थिति में उनसे सलाह ले सकते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन में ही, भौतिक जीवन में भी। और इस प्रकार आपके जितने भी काउंसलिंग होते हैं या काउंसलर होता है या काउंसलिंग में जो भी भक्त होते हैं, वे निश्चित रूप से एक दूसरे की सहायता में रहते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे का सलाह लेते हैं और इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए मंदिर की तरफ से आपको ये सुविधा प्रदान किया जा रहा है, आप इसका लाभ उठाइए। हाँ हाँ बताओ। हाँ 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 तो ये मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है अगले रविवार तक हम ये लगा देंगे। हाँ पहले होना चाहिए, आपका बात बराबर है, तो पहले नहीं किया, हमको पता चला कि हम कहते ही सब जुड़ जाएंगे लेकिन सब जुटे नहीं, तो कमी अभी महसूस हो रहा है, तो हम लोग ये सुविधा कर रहे हैं। आज ही मेरा गौर महानिधि प्रभु से बात हुआ है, यहाँ हैं तो गौर महानिधि प्रभु से कि आप ये पूरा सबके फोन नंबर एरिया वाइज और बार और सब डिटेल लगभग लग जाएगा, अब लग जाएगा, अब ये तो ये लग जाएगा। प्रभु जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये आप जानकारी लगा दीजिए, तो ये जानकारी लगा दिया जाएगा, और आप निजी तरह से भी प्राइवेट भी मिलकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ 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 ये आपका बहुत अच्छा है। तो ये जानकारी अभी नोटिस बोर्ड पे लगने वाला है, अभी देर नहीं होगा। नहीं अभी ये लगा दिया जाएगा। तो इस काउंसलिंग के विषय में आपका किसी का कोई जिज्ञासा या आपका कोई और विचार है तो आप कोई भी बोल, जैसे प्रभु जी ने बताया आप भी सब बता सकते हैं कि काउंसलिंग सिस्टम में आपका क्या विचार है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए कोई समस्या है या किसी का कोई भी है तो ये पूछ सकते हैं इसके विषय में। हाँ
बताइए।
ये खैर जो हमारा प्रश्न है उससे संबंधित नहीं है, लेकिन इसका उत्तर देता हूँ तब तक आप लोग। प्रभु जी का प्रश्न है कि ये जो हमारी माला में 108 मन का होता है इसका क्या मतलब है। हालांकि प्राय लगभग जितने भी पंथ हैं उनमें सभी की मालाओं में 108 ही मन के होते हैं, हमारे माला में नहीं, और सब अपने अपने पंथ के अनुसार कुछ अलग अलग मत देते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कुछ मत है दो तीन मत हैं इसका स्पष्टीकरण। लेकिन जो पहला ऐसा है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हमारे शास्त्र हैं उपनिषद, उन उपनिषदों की संख्या 108 है, इसलिए इन मणकों को भी संख्या 108 है। एक ऐसे कई कारण, एक कारण नहीं, दूसरा एक साइंस्टिक कारण भी है, वैज्ञानिक कारण, वो कारण है हमारे सांस लेने के संबंध से है। हम जो 24 घंटे में कितना सांस लेते हैं उस सांस की गणना की जाती है, फिर उसमें ये गणना मेरे को भी स्मरण नहीं है, आप चाहते हैं तो मैं इसका पूरा इसकी गणना के अनुसार उसको डिवाइडेशन किया जाता है, और उसके अनुसार ये 108 मणकों की गिनती करके उसके साथ ये संबंध है, हमारे सांसों के गिनती के साथ इसका संबंध है। वो क्या संबंध है ये पूरा गणित है, एक कैलकुलेशन है, तो इसलिए भी उसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो 108 के साथ मेल बैठता है, इसलिए 108 रखा गया है। कई भक्तों का ये भी मत है कि भगवान की गोपियों में प्रमुख 108 गोपियाँ थी, ऐसा भी कई भक्त बताते, लेकिन ये मैं कहीं पढ़ा, लेकिन ये जो मैं बताया दो बात, हमारे सांसों से कुछ कैलकुलेशन के अनुसार इसका मत है, और 108 उपनिषद हैं इसके लिए भी है, और भी कई कारण हैं, और भी कोई 54 मिला के 108 होता है, ऐसे और भी कई दो चार कारण हैं, मुख्य दो कारण के बारे इसे में बताया। ऐसे ही जो जैसे जैन संप्रदाय है तो उनमें भी 108 मणके होते हैं, तो उनके लिए उनका एक दूसरा भिन्न कारण है, ऐसा अलग अलग में अलग अलग कारण है 108। लेकिन वैज्ञानिक कारण है हमारे श्वास जो चलते हैं, तो ऐसा गणना किया गया है कि हमारे प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम का गिनती हो जाए, इस प्रकार का गिनती रखा गया है। आप समझ नहीं रहे लेकिन इसका गणना बताएंगे तो पता है। वो एक कागज है उसमें है ये लिखा हुआ है, ये आपको मैं बताऊंगा बाद में। नहीं ये नहीं, सांसों का 24 घंटे के सांसों का गिनती है और उसका कैलकुलेशन, और ये है किसी भक्त को मालूम हो तो बता सकता है, नहीं तो अभी अभी वो अपने एक ब्रह्मचारी आश्रम में वो लेटर पढ़ा है। वैष्णव धर्म क्या है, भागवत धर्म? तो भागवत धर्म जो है, जो भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया है वो वैष्णव धर्म है, जो भगवान के द्वारा बताया गया है। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। या वैष्णव धर्म क्या है, तो इसका नवयोगेंद्र में भी एक योगेंद्र उत्तर देते हैं, अच्युत पदा अंबुजो उपासनम। अच्युत मतलब कृष्ण, कृष्ण के चरणों की उपासना, उनकी भक्ति ही भागवत या वैष्णव धर्म है, उनका सेवा ही वैष्णव धर्म, सनातन धर्म भी वो ही है। विष्णु की, नारायण की, कृष्ण के चरण अंबुज की उपासना वैष्णव धर्म। ये भागवतम के 11वें स्कंद में ये शब्द आया है, अच्युत पदा अंबुजो उपासना। ये जो जिज्ञासा की थी निमि महाराज ने या वसुदेव जी ने नारद जी से, इसमें ये प्रश्न पूछा गया भागवत धर्म क्या है, ये भागवत धर्म वैष्णव धर्म। तो ये अच्युत मतलब कृष्ण की भक्ति करना है, ये वैष्णव धर्म है। या कृष्ण ने जो उपदेश दिया है उसका, उन भगवान कृष्ण ने जो बताया है वही वैष्णव धर्म, वही भागवत धर्म, जो भगवान बताते हैं वो, भगवान जो भी बताते हैं वो वैष्णव धर्म। ठीक है, और किसी का काउंसलिंग के बारे में किसी का कोई जिज्ञासा नहीं, तो आप सभी चेष्टा कीजिए काउंसलिंग में जुड़ने का प्रयास कीजिए, और इसके लिए आपको कोई हेल्प चाहिए तो मंदिर से निश्चित मिलेगा, किसी भी भक्त से, आप हमसे, वनमाली प्रभु से, या और भी जो यहाँ के भक्त हैं उनसे, सीनियर भक्तों से मिलकर काउंसलिंग के बारे में आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सहायता चाहिए तो आपको मिल सकती है। कम से कम 20 से ऊपर काउंसलिंग चलता है, काउंसलिंग है, काउंसलर 20 से ज़्यादा काउंसलर राधा गिरधारी मंदिर से नियुक्त किए गए। ठीक है, और जानकारी आपको आगे दिया जाएगा। हरे कृष्णा। तो अब सभी के लिए प्रसाद है, सभी कूपन लेकर जाएंगे। हरे कृष्णा। एक और सबसे एक निवेदन है विशेष रूप में,
सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना है कि हम जब प्रसाद देने जाते हैं तो कृपा करके आपसे ये आशा की जाती है कि आप बिल्कुल लाइन में खड़े होकर ढका मुखी किए बिना कुछ किए को हेल्प कीजिए। किसी भी कार्य को, किसी भी सेवा को सुचारू रूप करने के लिए आप सबके अगर हम ही गड़बड़ करेंगे तो जो मंदिर से नियम बनाया जाता है, जो बताया जाता है, उसको अनुकूल ठीक रूप से पालन करते हुए हम उसमें सहायता करते हुए, जैसे प्रसाद देना है तो लाइन से खड़े हैं, और ये आशा रखनी चाहिए कि मैं भले रहूं, मेरे आगे वाला प्रसाद मुझे कम मिल जाए लेकिन मेरे जो आगे बाजू वाला है उसको भी ये प्रसाद दे। ये कहते हैं वैष्णव सदाचार। मुझे प्रणाम करने को नहीं मिलता है कोई बात नहीं, इस भक्त को मिलना चाहिए।
रिकॉर्डिंग नहीं
करता मुझे प्रसाद नहीं मिला कोई बात नहीं लेकिन मेरे घर वाले भक्त को मिला ये वैष्णव का मंगल तो हम कम से कम इतना तो सोच सकते कि मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं उसको ठीक से
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे प्रभु जी अभी अभी बता रहे थे कि वैष्णव सदाचार हमें प्रसाद बाद में मिले हमारे साथ वालों को पहले मिलना चाहिए लेकिन आप सामने देखेंगे तो पूरा हाल लगभग वन थर्ड हाल खाली हो गया हाँ दो मिनट की मजाक भी नहीं कर सकते कभी कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है कुछ अनाउंसमेंट है उसके लिए 5 मिनट बैठना चाहिए सुनना चाहिए ये आपके लिए हमारे लिए सब